ये आकाशवाणी दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण तथा वन्य जीवन फोरम वातावरण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली परिवहन मंत्री ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, सड़कों का निरीक्षण कर जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाहरी दिल्ली के गांवों में बायो डीकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण तथा वन्य जीवन मंच वातावरण का उद्घाटन आज नई दिल्ली में किया गया। 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव का विषय जीवन के लिए आर्द्रभूमि है। ये आर्द्रभूमि के बारे में जागरूकता और संरक्षण पर केंद्रित है। कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्रालय में वन महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आर्द्रभूमि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लगभग 6% भारतीय आजीविका के लिए सीधे तौर पर आर्द्रभूमि पर निर्भर हैं। श्री कुमार ने आशा व्यक्त की है कि फिल्म महोत्सव सार्थक मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और संरक्षण रणनीतियां तैयार कर सकता है। भारत में जर्मनी के दूतावास में जलवायु और पर्यावरण विभाग की प्रमुख टैना डाइकहॉफ ने कहा है कि पर्यावरण और आर्द्रभूमि संरक्षण पर भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग बहुत सफल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फिल्म एक प्रभावशाली माध्यम है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज मटियाला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नंगली मेट्रो स्टेशन के पास मुख्य सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सड़कों को जल्द ठीक कराने का निर्देश दिया है।
यहाँ जितने भी पॉटहोल्स वगैरह सारे पीडब्ल्यूडी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ ही इंस्पेक्शन किया, तो सभी अधिकारियों को यही आदेश दिए कि ये फटाफट इनको रिपेयर करके जहाँ पैचवर्क की आवश्यकता है वो पैचवर्क करें और ताकि आने जाने वाले जो कम्यूटर्स हैं उनको कोई असुविधा ना हो।
राजधानी में सड़कों की खराब हालत को लेकर भाजपा ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ गड्ढों की पोल खोल अभियान की शुरुआत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शहर में हर जगह सड़कें टूटी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की जर्जर सड़कें दिल्ली सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार का नतीजा है। श्री सचदेवा ने कहा है कि इस अभियान के माध्यम से भाजपा दिल्ली सरकार के झूठ और भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रही है।
10 साल का भ्रष्टाचार है, हम वो दिखा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। उनके मंत्री जो मीडिया इवेंट कर रहे हैं उनके झूठ की पोल खोल रहे हैं। ये गड्ढे एक दिन के गड्ढे नहीं है, ये 10 साल के गड्ढे हैं। हम दिल्ली की आवाज उठा रहे हैं, वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर विभाग को दिल्ली की सरकार ने लूटने का काम किया।
हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि अब राजनीतिक दल या प्रत्याशी सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि उम्मीदवार और चुनाव एजेंडों को छोड़कर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता या नेता तथा प्रचारक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते। सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की समयावधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।
प्रचार बंद जो निर्धारित 48 घंटे होता है चुनाव की समाप्ति के समय से, तो उसमें प्रचार बंद होने के बाद वो किसी प्रकार का कैंपेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जिसकी भी वो 127A के अंतर्गत जो जिला स्तर है या राज्य स्तर की जो कमेटी है उनसे उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो होम टू होम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई प्रचार नहीं कर सकते।
हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है और इसे शुरू में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तेलंगाना के 7 जिलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप देने का है। इस योजना का कार्यान्वयन ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक इस पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। सूत्रों ने बताया कि 21 से 24 वर्ष की उम्र के ऐसे युवा जो कहीं पूर्णकालिक कार्य और किसी शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में पंजीकृत नहीं है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाहरी दिल्ली के गांवों में आज से बायोडीकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत कर दी है। इस छिड़काव से खेतों में मौजूद पराली को गलाया जाएगा। इस बारे में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि बायोडीकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत बाहरी दिल्ली के पल्ला गांव से की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 5000 एकड़ से ज्यादा खेतों में बायोडीकम्पोजर का निशुल्क छिड़काव करवाया जा रहा है, जिसके लिए 11 टीमें गठित की गई हैं। पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि बायोडीकम्पोजर के छिड़काव के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं और अभी तक लगभग 850 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कल जिस ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ था, उसका मुख्य आरोपी और सरगना कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवा कांग्रेस आईटी सेल का प्रमुख है। उन्होंने दावा किया कि आरोपी के मोबाइल फोन से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से संबंधित संपर्क विवरण और अन्य जानकारी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सरगना से अपने संबंध पर जवाब देना चाहिए।
इंडियन यूथ कांग्रेस में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है, ये 24 मार्च 2022। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्या संबंध।
दिल्ली पुलिस ने कल सबसे बड़े मादक पदार्थों का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मैरुआना को जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5600 करोड़ रुपए है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि श्री केजरीवाल ने स्वेच्छा से आवास खाली करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि श्री केजरीवाल अब अस्थायी तौर पर पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक मित्तल के फिरोजशाह रोड स्थित सरकारी आवास में रहेंगे।
हमारी पार्टी के जो सांसद हैं, जो इस पार्टी मुख्यालय के नजदीक ही रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की जो अपनी विधानसभा है उसमें उनका आवास है, तो उन्होंने उनको न्योता दिया। अब वो अशोक मित्तल जी के साथ उनके आवास पे उनका परिवार रहेगा।
आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बस मार्शलों की पुनर्बहाली के मामले को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर मिलने के समय न देने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में हाल ही में दिल्ली विधानसभा सत्र में बस मार्शलों का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पुनर्बहाली पर सहमति जताई थी। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के विधायक उपराज्यपाल से मिलना चाहते थे, लेकिन समय न मिल पाने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं भाजपा विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि श्री भारद्वाज ने उपराज्यपाल से मिलने के लिए तारीख का चुनाव खुद किया था और वक्त आने पर वो नदारद रहे।
एक मंत्री, एक विधायक उपराज्यपाल निवास पर नहीं पहुंचा, कोई नहीं आया। जब आपने 3 अक्टूबर तय की थी तो बिना समय लिए तय कर दी थी, और आज जब 3 अक्टूबर आई, एक आम आदमी पार्टी का नेता नहीं आया।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अनेक राज्यों की जेल नियमावली में जाति आधारित उन भेदभावपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिनमें कैदियों की जाति के आधार पर काम का आवंटन किया जाता है। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के अंदर अपनी जेल नियमावली को संशोधित करने और जेलों में जाति आधारित भेदभाव कायम रखने वाले प्रावधानों को हटाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव रोकने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम का वितरण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रभावी शासन के लिए नियम के बजाय भूमिका पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि शासन में ये बदलाव अधिकारियों को अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ कौशल को जोड़ने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगा। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला में कहा कि देश में शासन के तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं और ये पारंपरिक नियम आधारित प्रणाली से गतिशील और भूमिका आधारित ढांचे की ओर बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन आज दिल्ली के प्रमुख मंदिरों झंडेवालान, कालकाजी और छतरपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शक्ति वंदना को समर्पित ये पावन पर्व सभी के लिए शुभकारी सिद्ध हो। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि मां शैलपुत्री का आशीर्वाद सभी देशवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण कल से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए अनुमान लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की 10 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री और आम नागरिकों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 14 विदेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। ये सभी विदेशी नागरिक नाइजीरिया मूल के हैं। पुलिस ने बताया कि इन्हें द्वारका जिले से पकड़ा गया और जल्द ही इन्हें वापस भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया है कि ये सभी विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहे थे। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण तथा वन्य जीवन फोरम वातावरण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली परिवहन मंत्री ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, सड़कों का निरीक्षण कर जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाहरी दिल्ली के गांवों में बायोडिकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।